आदर्श बालकों की अमर कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं लव कुश की कथा। वाचक स्वर है योगेश पांडे का।
रावण को युद्ध में परास्त कर अंततः रामचंद्र जी ने जानकी का उद्धार किया। चूंकि सीता जी एक लंबे समय तक राक्षस राज के यहाँ रहीं, इसलिए उनकी पवित्रता की पुष्टि के लिए राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली और उसमें उन्हें सर्वथा शुद्ध और पवित्र पाया। किंतु काल की गति को कौन पहचान सका है? राज महिषी होकर भी सीता जी के भाग्य में राज सुख का भोग नहीं लिखा था। एक धोबी द्वारा सीता जी पर लांछन लगाए जाने के कारण रामचंद्र जी ने सीता जी को त्यागने का निर्णय ले लिया। लोगों ने बहुत समझाया, पर रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे अपने आदर्शों की रक्षा के प्रति सजग थे, अतः लोगों के समझाने के बावजूद वे अपने निर्णय पर अडिग रहे और सीता जी को वन में छोड़ आने का आदेश लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण बड़े भाई की आज्ञा पालन हेतु बाध्य थे। उन्होंने रथ पर बिठाकर सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप वन में छोड़ दिया। उस समय सीता जी गर्भवती थीं। महर्षि वाल्मीकि सीता जी को अपने आश्रम में ले आए। समय आने पर सीता जी ने यहीं जुड़वा बालकों को जन्म दिया, जिनका नाम महर्षि ने लव और कुश रखा। वे उन्हें शस्त्र शास्त्रों से शिक्षित दीक्षित भी करने लगे। उधर अयोध्या में भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। विधिपूर्वक पूजा करके श्यामकर्ण अश्व को छोड़ा गया। बड़ी भारी सेना के साथ राजकुमार पुष्कल तथा सेनापति कालजीत के साथ शत्रुघ्न उस अश्व की रक्षा में चले। हनुमान तथा वानर राज सुग्रीव भी वानर एवं रीछों की सेना लेकर शत्रुघ्न के साथ चल रहे थे। वो अश्व जिधर इच्छा होती उधर चला जाता, सेना उसके पीछे रहकर चलती थी ताकि अश्व को स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर जाने में कोई बाधा न हो। अनेक नरेशों ने स्वयं शत्रुघ्न का आधिपत्य स्वीकार किया और कुछ ने समझाने बुझाने पर ऐसा किया। कहीं कहीं संग्राम भी करना पड़ा। इस प्रकार सर्वत्र विजय की दुंदुभी बजाता वो अश्व अंततः घूमता हुआ महर्षि वाल्मीकि के तपोवन के निकट पहुंचा। कुमार लव उस समय मुनि कुमारों के साथ वन में खेल रहा था। मणि जटित स्वर्णाभूषणों से सज्जित उस परम सुंदर घोड़े को देखकर सभी बालक उसके समीप आ गए। बड़े स्पष्ट तथा सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ एक घोषणा पत्र अश्व के मस्तक पर बंधा था। उस घोषणा पत्र में लिखा था, यह अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा श्री राम के यज्ञ का अश्व है और परम पराक्रमी शत्रुघ्न कुमार इसकी रक्षा कर रहे हैं। जिस देश से यह अश्व निकल जाएगा वो जीता हुआ समझा जाएगा। जिस किसी क्षत्रिय में साहस हो और जो अयोध्या के महाराज को अपना सम्राट न मानना चाहे, वह अश्व को पकड़े और युद्ध करे। इस घोषणा पत्र को पढ़कर लव को क्रोध आ गया। उसने घोड़े को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया और खुद धनुष बाण हाथ में लेकर लड़ाई के लिए तैयार हो गया। साथ के मुनि बालकों ने पहले तो उसे रोकने का खूब प्रयास किया, पर जब वो नहीं माना तब युद्ध देखने के लिए वे सब कुछ दूर खड़े हो गए। घोड़े के साथ चलने वाले रक्षकों ने देखा कि एक बालक ने अश्व को बांध दिया है। उन्होंने सोचा, बालक ने ना समझी में ऐसी नादानी की है। वे लोग बंधे घोड़े को खोलने लगे, तभी सनसनाते तीर आकर उनकी भुजाओं में धंस गए। वे वहां से भागे और अश्व के बांधे जाने की विस्तार पूर्वक सूचना शत्रुघ्न को दे दी। अपने सैनिकों की घायल भुजाएं देख और उनकी बातें सुन शत्रुघ्न को समझते देर न लगी कि अश्व को बांधने वाला बालक कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने सेनापति को व्यूह रचना की आज्ञा दी। संपूर्ण सेना दुर्भेद व्यूह के रूप में खड़ी की गई और तब सब लोग सेना के साथ जहां घोड़ा बंधा था वहां पहुंचे। एक छोटे से सुकुमार बालक को धनुष चढ़ाए सम्मुख खड़े देख सेनापति ने उसे समझाने का प्रयास किया। तुम मुझसे डरते हो तो लौट जाओ, लव ने कहा। इस घोड़े के स्वामी श्री राम से जाकर कहो कि लव ने उनका घोड़ा बांध लिया है। आखिरकार वहां युद्ध शुरू हो गया। लव के बाणों की वर्षा से सेना में भगदड़ मच गई। हाथी, घोड़े और सैनिक कट कट कर गिरने लगे। सेनापति कालजीत ने पूरी ताकत से युद्ध किया, पूरी ताकत से युद्ध किया, लेकिन लव ने उसके सभी हथियार बात की बात में काट डाले और फिर उसकी दोनों भुजाएं और अंत में मस्तक भी काट गिराया। पहले तो शत्रुघ्न को अपने सैनिकों द्वारा दिए इस समाचार पर विश्वास ही नहीं होता था कि कोई उनके सेनापति को मार सकता है। अंत में समाचार सही जानकर अपने मंत्रियों से सलाह लेकर वे खुद पूरी सेना के साथ लड़ाई के क्षेत्र में आ गए। उस बड़ी सेना ने लव को चारों ओर से घेर लिया। लव ने जब देखा कि वो चारों ओर से घिर चुका है तो उसने इतने भीषण तीर बरसाए कि सैनिकों के हौसले पस्त हो गए। वे छिन्न भिन्न होकर भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर पुष्कल आगे बढ़े, पर थोड़ी देर के संग्राम में ही लव के बाण से पुष्कल मूर्छित हो गए। पुष्कल के मूर्छित होते ही क्रोधित हो हनुमान जी युद्ध के लिए आगे कूद पड़े। उन्होंने लव पर पत्थरों तथा वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी, पर लव ने उन सब के टुकड़े बिखेर दिए। गुस्से में भरकर हनुमान जी ने लव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। तब लव ने अपनी माता का स्मरण करके उनकी पूंछ पर एक घूंसा जमाया। इस घूंसे की चोट से हनुमान जी तिलमिलाए और लव को छोड़ दिया। अब लव ने उनको इतने बाण मारे कि वो भी मूर्छित हो गए। अब शत्रुघ्न लव के सामने आए, घन घोर लड़ाई हुई और उसके बाद लव ने उनको भी मूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न को मूर्छित होते देखकर सुरथ जैसे कई राजा लव पर टूट पड़े। अकेला लव बड़े बड़े अनेक महारथियों से संग्राम कर रहा था। वो लड़ाई चल ही रही थी कि तभी शत्रुघ्न की मूर्छा टूटी। शत्रुघ्न ने भगवान श्री राम का दिया हुआ वो बाण धनुष पर चढ़ाया जिससे उन्होंने लवणासुर को मारा था। उस तेजोमय बाण के छाती में लगने से लव मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छित लव को रथ पर रखकर अयोध्या ले जाने का विचार शत्रुघ्न करने लगे। जो मुनि कुमार दूर खड़े ये युद्ध देख रहे थे वे भाग कर आश्रम पहुंचे और माता जानकी को सारी बात बताते हुए कहा कि मूर्छित लव को रथ पर लाद वे कहीं ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुखद समाचार से माता जानकी रोने लगी। तभी वहां कुमार कुश आ पहुंचे। मुनि कुमारों ने उसे भी सारी बात बता दी। सुनते ही कुश ने क्रोध में भरकर अपना धनुष बाण उठाया और माता को प्रणाम कर युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़े। लव उस समय रथ पर पड़ा था लेकिन उसकी मूर्छा दूर हो रही थी। दूर से दौड़कर आते भाई कुश को उसने देख लिया और वो भी रथ से कूद कर नीचे आ गया। अब कुश ने पूर्व से और लव ने पश्चिम से रणभूमि में खड़े योद्धाओं पर आक्रमण बोल दिया। क्रोध में भरे बालकों की मार से वहां की युद्ध भूमि लाशों से पट गई। बड़े बड़े योद्धा भागकर प्राण बचाने का प्रयत्न करने लगे। जो भी युद्ध करने आता कुछ ही देर में उसका शरीर बाणों से छलनी हो जाता। हनुमान और अंगद को लव तथा कुश बाण मार मार कर बार बार आकाश में फेंकने लगे। जब ये दोनों आकाश से भूमि पर गिरने को होते तब वे फिर बाण मारकर उन्हें ऊपर उछाल देते। इस प्रकार गेंद की तरह उछलते उछलते उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। आखिर लव कुश को उन पर तरस आ ही गया और उन्होंने उन पर बाण चलाना बंद कर दिया। तब धरती पर गिरकर वे दोनों मूर्छित हो गए। कुश ने अपने तीखे बाणों के प्रहार से शत्रुघ्न को भी मूर्छित कर दिया। महावीर सुरथ कुश के बाणों के आघात से धराशायी हो गए और वानर राज सुग्रीव को कुश ने वर्णपाश में बांध लिया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने युद्ध जीत लिया। युद्ध के बाद लव ने कुश से कहा, भाई कुश, इस युद्ध की विजय स्मृति के रूप में हम कोई चिन्ह ले चलें। दोनों भाइयों ने पहले शत्रुघ्न के मुकुट में जड़ी बहुमूल्य मणि निकाल ली और फिर लव ने पुष्कल का किरीट उतार लिया। उसकी भुजाओं से बड़े बहुमूल्य स्वर्णाभूषण और उनके हथियार भी दोनों भाइयों ने ले लिए। भैया, मैं इन दोनों बंदरों को भी ले चलूंगा, लव ने कहा। इनको देखकर माताजी हंसेंगी, मुनि कुमार प्रसन्न होंगे और अपना भी मनोरंजन होगा। दोनों भाइयों ने एक एक कर सुग्रीव तथा हनुमान की पूंछ पकड़ी और उन्हें उसी तरह उठाए वे आश्रम की ओर चले। माता जानकी आश्रम के द्वार पर खड़ी पुत्रों के सकुशल लौट आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें लौट आता देखकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। दो वानरों को पूंछ से उठाए लाता देख पहले तो सीता जी को हंसी आ गई, पर जब दोनों कुमार निकट आए तो वानरों को पहचान कर उनकी हंसी लुप्त हो गई। पुत्र को डांटते हुए उन्होंने कहा, तुम उन्हें शीघ्र छोड़ दो, ये लंका को भस्म करने वाले महावीर हनुमान हैं और ये वानर राज सुग्रीव। दोनों भाइयों ने उन्हें छोड़ दिया और सरल भाव से युद्ध का कारण तथा परिणाम बता दिया। सुनकर माता जानकी विचलित हो गईं और बोली, पुत्रों तुम दोनों ने बड़ा अन्याय किया है। वो तो तुम्हारे पिता का अश्व है, उसे इसी समय छोड़ दो। पर हमने तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही घोड़े को बांधा था और युद्ध करने वाले लोगों को हराया था। दोनों भाइयों ने कहा, महर्षि वाल्मीकि ने हमें यही पढ़ाया है कि धर्मपूर्वक युद्ध करने वाला क्षत्रिय पाप का भागी नहीं होता। अब आप कहती हैं तो हम घोड़े को छोड़ देते हैं। उनके जाने पर आंखें बंद कर माता जानकी ने संकल्प किया, यदि मैंने मन से भी श्री राम को छोड़कर कभी किसी पुरुष का चितन किया हो, यदि मेरा चित्त धर्म में अविचल भाव से स्थिर रहा हो, तो युद्ध में घायल मूर्छित और मारे गए लोग पुनः स्वस्थ व जीवित हो जाएं। इधर जानकी जी के मुख से ये शब्द निकले और उधर युद्ध भूमि में सब लोग निद्रा से जागे हुए के समान उठ बैठे। उनके कटे हुए अंग भी जुड़ गए थे, किसी के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। शत्रुघ्न ने देखा कि उनके मुकुट की मणि नहीं है, पुष्कल को अपना किरीट आभूषण और हथियार नहीं मिले। सामने यज्ञ का घोड़ा खड़ा था, उसे लेकर वे सब अयोध्या लौट गए और वहां पहुंचकर भगवान श्री राम से सारी बातें बताई। बाद में जब यज्ञ आरंभ हुआ तो महर्षि वाल्मीकि लव और कुश को अपने साथ लेकर अयोध्या गए थे। एक रेडियो।